नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में 5000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। कहा, इन परियोजनाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन क्षेत्र को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की। चीन में एशियाई खेलों में भारत ने स्क्वाश के मिक्स डबल्स और महिलाओं की तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 83 हुई। और आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आज से गुजरात में अहमदाबाद में, उद्घाटन मैच में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला जारी। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार राजस्थान में रेल और सड़क संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य कर रही है। राजस्थान के जोधपुर में उन्होंने कहा कि केंद्र हर क्षेत्र में तेजी से विकास पर ध्यान दे रहा है।
भारत सरकार आज राजस्थान में हर दिशा में रेल और रोड समेत हर क्षेत्र में तेज गति से काम कर रही है। इसी साल रेलवे के विकास के लिए करीब करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से 2014 तक राजस्थान में लगभग 600 किलोमीटर रेल लाइन का विद्युतीकरण हुआ था, जबकि पिछले 9 वर्ष में 3,700 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण किया गया। प्रधानमंत्री ने आज राजस्थान के जोधपुर में लगभग 50 अरब रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज शुरू की गई रेल और सड़क परियोजनाओं से राज्य के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इनसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने जोधपुर के एम्स में 350 बिस्तर वाले ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास किया।
एम्स जोधपुर में ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर की एडवांस सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर बॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर, ये संस्थान आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर का अत्याधुनिक परिसर भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर हवाई अड्डे में 480 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन के विकास की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में प्राचीन गौरव के दर्शन होते हैं।
चाहे हमारे देश के लोग हो या विदेशी पर्यटक हो, हर किसी की इच्छा होती है कि वो एक बार सन सिटी जोधपुर देखने के लिए जरूर आए, जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत के शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है।
प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश में 12,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क, रेल, गैस पाइपलाइन, आवास और स्वच्छ पेयजल से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री इंदौर में लाइट हाउस परियोजना का उद्घाटन करेंगे, इससे 1,000 से अधिक परिवारों को लाभ होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण उपलब्ध कराने की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य में महिलाओं को 35% आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवाएं महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान नियमावली 1997 में संशोधन किया गया है। अधिसूचना के अनुसार सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्य के सभी पदों पर 35% आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35% रिक्तियों पर महिलाओं की भर्ती करने की घोषणा की थी। पंचायत और शहरी निकायों के चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। राज्य में पुलिस में महिलाओं की भर्ती के लिए 30% आरक्षण था। महिलाओं के नाम संपत्ति के पंजीकरण पर भी छूट दी जाती है। राज्य में कुल 5,60,00,000 मतदाता हैं, जिनमें से 2,72,00,000 महिलाएं हैं। सिक्किम के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। त्रिशक्ति कोर के जवान उत्तरी सिक्किम में चुंगथांग, लांचुंग और लाचेन में फंसे नागरिकों और पर्यटकों को चिकित्सा सहायता तथा टेलीफोन से संपर्क सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दूसरी बटालियन के कमांडेंट गुरमिंदर सिंह ने बताया कि लांचुंग के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव अभियान को और तेज करने के लिए जल्द ही अतिरिक्त जवानों को भेजा जाएगा।
टीम रेस्क्यूड 7 लाइव विक्टिम्स एंड रिकवर्ड 3 डिसीज्ड विक्टिम्स एंड सब्सिक्वेंटली टिल नाउ वी हैव इवैक्यूएटेड 169 विक्टिम्स। देयर आर 4 एनडीआरएफ टीम्स व्हिच आर डिप्लॉयड। Resultantly, this lake outburst. One, I said, the Pakyong team, which is operating in Singtham. Then 3 teams from NDRF, RRC, Siliguri were demobilized. So we have right now 4 teams on ground.
सिक्किम में मंगलवार रात को ग्लेशियर पिघलने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ से जानमाल की हानि हुई है। अब तक 14 लोगों की जान गई है और सेना के जवानों सहित 100 से अधिक लोग लापता हैं। इस आपदा से 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। पश्चिम बंगाल में उत्तरी क्षेत्र के विभिन्न भागों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में दार्जिलिंग और कलिंगपोंग तथा तराई क्षेत्रों में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार सबसे अधिक प्रभावित हैं। दार्जिलिंग और कलिंगपोंग जिलों के विभिन्न भागों का संपर्क मुख्य भूमि से कट गया है। उत्तरी बंगाल के 3 जिले उत्तरी दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और कूचबिहार में स्थिति चिंताजनक है। पड़ोसी राज्य सिक्किम की पहाड़ियों में बाढ़ के बाद तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। कल रात से जलपाईगुड़ी जिले के गाजोल डोबा क्षेत्र में बाढ़ के पानी से एक महिला सहित 3 लोगों के शव बरामद किए गए। प्रशासन इस बारे में आश्वस्त नहीं है कि ये शव स्थानीय लोगों के हैं या पहाड़ों से बहकर आए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल स्थिति का जायजा लेने के लिए आज सुबह उत्तरी बंगाल पहुंचे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में आज राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई ठिकानों पर छापे मारे। ये कार्रवाई राज्य में शहरी निकायों में भर्ती के दौरान कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में की जा रही है। जांच एजेंसी के अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ श्री घोष के उत्तर 24 परगना जिले स्थित माइकल नगर आवास पहुंचे। इस सिलसिले में राज्य में 12 अन्य स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय राज्य में 2014 से 2018 के बीच विभिन्न शहरी निकायों में करीब 1500 लोगों की कथित अवैध भर्ती के आरोपों की जांच कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा के सांसदों तथा विधायकों ने राजघाट पर प्रदर्शन किया और महात्मा गांधी की समाधि पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित भ्रष्ट शासन से छुटकारे के लिए प्रार्थना की। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष जारी रखेगी और भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाती रहेगी। केरल उच्च न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। इससे वे लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब एशियाई खेल खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह।
चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों के 12वें दिन आज भारत की स्वर्णिम शुरुआत हुई और भारत ने 3 स्वर्ण पदक जीते। तीरंदाजी में पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। अभिषेक ओजस और प्रथमेश की जोड़ी ने कोरिया को हराकर स्वर्ण देश के नाम किया। उधर महिला कंपाउंड स्पर्धा में ज्योति सुरेखा, परनीत और अदिति की तिकड़ी ने चीनी ताइपे को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। स्क्वाश मिक्स डबल्स फाइनल में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू की जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी को हराकर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा है कि उनकी सफलता पर देश को गर्व है। बैडमिंटन में एचएस प्रणय ने सेमीफाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। कुश्ती में अंतिम पंघाल, मानसी, पूजा और नवीन कांस्य पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना चीन से हो रहा है। भारत 21 स्वर्ण, 31 रजत और 32 कांस्य सहित कुल 84 पदक जीतकर चौथे स्थान पर है। एशियाई खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
उधर अहमदाबाद में आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हो गई है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच उद्घाटन मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। विश्व कप मैच के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के आवेदन पोर्टल dbtyas-sports.gov.in पर अगले महीने की 2 तारीख तक जमा कराए जा सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन केवल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय प्रत्येक वर्ष खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वर्ष 2023 के लिए इन खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने की अधिसूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। नौसेना बेस आईएनएस शिवाजी की 10 सदस्यीय भारतीय नौसेना पर्वतारोहण टीम ने सिक्किम में 16,207 फीट ऊंचे गोईचाला दर्रे पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले पश्चिमी नौसेना कमांड के पर्वतारोही 4 सदस्यों ने पिछले महीने की 30 तारीख को माउंट भागीरथी द्वितीय शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की और नौसेना का ध्वज फहराया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उधमपुर के बसोहली पश्मीना और कलादी डेयरी उत्पाद से जुड़े बुनकरों, उत्पादकों और परिवारों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिलने पर हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिलने से कलादी डेयरी उत्पादन से जुड़े बुनकरों, उत्पादकों और परिवारों का मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश की सांस्कृतिक प्रबुद्धता में विविधता महान संतों की शिक्षाओं के सामान्य धागों से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि देश के महान संतों की शिक्षा एक भारत श्रेष्ठ भारत के सामूहिक विचार को और मजबूत करती है। श्री रामलिंगा स्वामी की 200वीं जयंती के अवसर पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री रामलिंगा स्वामी देश के सर्वाधिक सम्मानित संतों में से एक थे। दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में आज से स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर कर रहा है। ये मेला 10 अक्टूबर तक चलेगा। मेले में नेत्र और दंत रोग, कैंसर, ब्लड प्रेशर तथा मधुमेह की निःशुल्क जांच सुविधा उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में 5,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा इन परियोजनाओं से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटन क्षेत्र को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री आज दोपहर बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर में 12,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। चीन में एशियाई खेलों में भारत ने पुरुष और महिलाओं की तीरंदाजी कंपाउंड स्पर्धा में तथा स्क्वाश के मिक्स डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। भारत के पदकों की संख्या 84 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।